चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 10 महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौट आना। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे भक्त रूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह है, किंतु जब महाप्रभु लौटते हैं तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बरस कर उसे नष्ट होने से बचा लेती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत आचार्य की जय हो तथा भगवान चैतन्य के समस्त भक्तों की जय हो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े तब राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने महल में बुलाया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा से मिले तो राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। राजा ने भट्टाचार्य से कहा, मैंने सुना है कि बंगाल से एक महापुरुष आए हैं जो आपके घर ठहरे हैं। मैंने यह भी सुना है कि वे अत्यंत कृपालु हैं। मैंने यह भी सुना है इस महापुरुष ने आप पर महती कृपा की है। जो भी हो, विभिन्न लोगों से मैं यही सुन रहा हूँ। अब आप कृपा करके मेरी उनसे भेंट कराकर मुझे कृतार्थ करें। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी सुना है वह सत्य है, किंतु जहाँ तक भेंट करने की बात है उसका प्रबंध कर पाना अत्यंत कठिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और सांसारिक मामलों से अत्यधिक विरक्त हैं। वे निर्जन स्थान में ठहरते हैं और सपने में भी किसी राजा से भेंट नहीं करते। इतने पर भी मैं आपकी भेंट कराने का प्रयास करता, किंतु वे हाल ही में दक्षिण भारत के भ्रमण पर गए हैं। राजा ने पूछा, उन्होंने जगन्नाथपुरी को क्यों छोड़ा? भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, महापुरुषों की लीलाएं ही ऐसी हैं। बड़े बड़े संत तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाने के लिए उनकी यात्रा करते हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं और अनेक भक्त जीवों का उद्धार कर रहे हैं। आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ हैं, वे अपनी शुद्धता के कारण भगवान के चिरंतन संगी हैं, अतः वे तीर्थों को भी शुद्ध कर सकते हैं। वैष्णव तीर्थ स्थानों की यात्रा उन्हें पवित्र बनाने तथा पतित भद्र जीवों का उद्धार करने के लिए करता है। यह वैष्णवों का कर्तव्य है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। फलस्वरूप वे पूर्णतः स्वतंत्र नियंता हैं, फिर भी भक्त रूप में वे भक्त के कार्य करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? आपने उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें यहीं क्यों नहीं रखा? सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वे पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वे किसी पर आश्रित नहीं हैं। फिर भी मैंने उन्हें यहाँ रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे परम भगवान हैं तथा पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अब मैं इसमें सफल नहीं हो सका। राजा ने कहा, हे भट्टाचार्य, मैं जिन्हें जानता हूँ उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं। अतएव जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुनः यहाँ आए तो मैं अपने नेत्रों को सफल बनाने के लिए उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही लौट आएंगे। मैं उनके लिए एक उत्तम स्थान चाहता हूँ जो एकांत तथा शांत हो। श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान एकांत में हो तथा जगन्नाथ मंदिर के निकट भी। आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और उनके लिए एक अच्छा सा स्थान दें। राजा ने उत्तर दिया, आप जैसा चाहते हैं। काशी मिश्र का घर वैसा ही है। वह मंदिर के निकट है और अत्यंत निर्जन तथा शांत भी है। यह कहकर राजा महाप्रभु के पुनरागमन के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने गए। जब काशी मिश्र ने यह प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा, मैं परम भाग्यवान हूँ कि समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पर ठहरेंगे। इस तरह जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम के सारे निवासी श्री चैतन्य महाप्रभु से फिर से भेंट करने के लिए परम उत्सुक हो गए। जब जगन्नाथपुरी के सारे निवासी पुनः महाप्रभु से भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए तभी महाप्रभु दक्षिण भारत से लौट आए। महाप्रभु की वापसी के बारे में सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सभी लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले, कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारी भेंट कराने की व्यवस्था कर दें। आपकी कृपा के बल पर ही हमें महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकती है। भट्टाचार्य ने लोगों से कहा, महाप्रभु कल काशी मिश्र के घर पर होंगे, तभी मैं आप लोगों की उनसे मिलने की व्यवस्था करूंगा। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और वे बड़े ही उत्साह पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने गए। भगवान जगन्नाथ के सारे सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान का प्रसाद ला कर दिया। तब बदले में चैतन्य महाप्रभु ने उन सब का आलिंगन किया। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए। फिर भट्टाचार्य उन्हें काशी मिश्र के घर ले गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर आए तो वे तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्होंने स्वयं को तथा अपने सारे घर बार को उनकी शरण में दे दिया। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया। महाप्रभु ने उसकी सेवा स्वीकार की और उसे गले लगाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए और नित्यानंद प्रभु समेत सारे भक्तगण उनके चारों ओर बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसमें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान रखा गया था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यह स्थान आपके अनुकूल है, कृपया इसे स्वीकार करें, ऐसी काशी मिश्र की आशा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर आप सबका है, अतएव आप लोग जो भी कहेंगे वह मुझे स्वीकार है। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की दाहिनी ओर बैठकर पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी के सारे निवासियों का परिचय कराने लगे। भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, ये नीलाचल के सारे निवासी आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति में ये सारे लोग प्यासे चातकों की तरह निराश होकर रोदन कर रहे थे, कृपया इन्हें अपनी शरण में लें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम जनार्दन का परिचय देते हुए कहा, यह भगवान जगन्नाथ का सेवक जनार्दन है। यह भगवान की तब सेवा करता है जब उनके दिव्य शरीर को नया बनाया जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बतलाया, यह कृष्ण दास है जो सोने का एक दंड लिए रहता है, और यह है शिकी माहिती जो लेखन अधिकारी है। यह प्रद्युम्न मिश्र है जो सारे वैष्णवों का मुखिया है। यह जगन्नाथ जी का महान सेवक है और इसका नाम दास है। यह शिखी माहिती का भाई मुरारी माहिती है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इसका अन्य कोई आश्रय नहीं है। ये चंदनेश्वर, सिंहेश्वर, मुरारी ब्राह्मण तथा विष्णु दास हैं। ये सभी निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करने में लगे रहते हैं। ये परमानंद प्रहर राज हैं, जो महापात्र नाम से भी जाने जाते हैं। ये अत्यधिक बुद्धिमान हैं। ये सारे शुद्ध भक्त जगन्नाथपुरी के आभूषणों के समान सेवा करते हैं। ये सभी आपके चरण कमलों का अविचलित भाव से ध्यान करते हैं। इस परिचय के बाद सारे लोग जमीन पर डंडे की तरह गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक पर कृपा करके उन सब का आलिंगन किया। तभी भवानंद राय अपने चार पुत्रों के साथ आए और वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे बतलाया, ये भवानंद राय हैं, जिनके प्रथम पुत्र रामानंद राय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन किया और बड़े ही आदर के साथ उनके पुत्र रामानंद राय का बखान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय का यह कह कर सम्मान किया, जिस व्यक्ति का रामानंद राय जैसा पुत्र रत्न हो उसकी महिमा का वर्णन इस मर्त्य लोक में नहीं किया जा सकता। आप साक्षात महाराज पांडु हैं और आपकी पत्नी साक्षात कुंती हैं। आपके सारे के सारे पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं, जो पांचों पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई प्रशंसा सुनकर भवानंद राय ने निवेदन किया, मैं चार वर्णों में चौथा शूद्र हूँ और सांसारिक कार्यों में लगा रहने वाला प्राणी हूँ। मैं अत्यंत पतित हूँ, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। यह इसका प्रमाण है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्रशंसा करते हुए भवानंद राय ने यह भी कहा, मैं अपने घर, धन, नौकरों तथा पांचों पुत्रों समेत आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। यह वाणी नाथ नामक मेरा पुत्र आपके चरण कमलों में रहकर आपके आदेशों का तुरंत पालन करेगा और आपकी सेवा करता रहेगा। हे प्रभु, कृपया आप मुझे अपना संबंधी आत्मीय समझें। आप जब भी जो चाहें उसके लिए आदेश देने में तनिक भी संकोच नहीं करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय की बात यह कहते हुए मान ली, मैं बिना संकोच के स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप पराये नहीं हैं। आप जन्म जन्मांतर अपने परिवार सहित मेरे सेवक रहते आए हैं। 5-7 दिनों के भीतर श्री रामानंद आने वाले हैं। जो ही वे आ जाएंगे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझे उनके संग में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद का आलिंगन किया। फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सिरों पर अपने चरण कमल रखे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को उनके घर वापस भेज दिया और अपनी निजी सेवा में केवल वाणी नाथ पटनायक को रख लिया। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्ण दास को बुलवाया, जो उनके साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिण भारत गया था। इसने भट्टाचार्यों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया था, किंतु मैं उनकी संगति से बचाकर इसे यहाँ लाया हूँ। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, अतएव मैं इसे अब विदा कर रहा हूँ। अब वह जहाँ चाहे जा सकता है, क्योंकि मैं आगे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। यह सुनकर कि महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया है, काला कृष्ण दास रोने लगा, किंतु महाप्रभु ने उसकी परवाह नहीं की और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद तथा दामोदर आदि अन्य भक्त किसी युक्ति पर विचार करने लगे। महाप्रभु के चारों भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर शची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर अद्वैत तथा श्रीवास जैसे भक्त उन्हें मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। यह कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल क्यों न भेज दें, उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। अगले दिन महाप्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपा करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने की अनुमति प्रदान करें। माता शची तथा अद्वैत प्रभु आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से आपके पुनरागमन का समाचार न पाकर अत्यंत दुखी हैं। एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन्नाथपुरी में आपके पुनरागमन का शुभ समाचार दे आए। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोग जो चाहें तय करें। इस तरह काला कृष्ण दास बंगाल भेज दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ का पर्याप्त प्रसाद दे दिया गया। तब काला कृष्ण दास बंगाल गया, जहां सर्वप्रथम वह माता शची को मिलने नवद्वीप पहुंचा। शची माता के पास पहुंचकर काला कृष्ण दास ने प्रथम उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद भेंट किया। फिर उसने यह शुभ समाचार दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आए हैं। इस शुभ समाचार से माता शची तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि नवद्वीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ। महाप्रभु की पुरी में वापसी सुनकर सभी लोग अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद कृष्णदास अद्वैत आचार्य के घर गया। नमस्कार करने के बाद कृष्णदास ने अद्वैत आचार्य को महाप्रसाद दिया। फिर उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया। जब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लौट आने का समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुंकार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। यह शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर परम प्रसन्न हुए। इसी तरह वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त तथा शिवानंद सेन भी प्रसन्न हुए। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि तथा गदाधर पंडित सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय तथा श्रीधर भी इस समाचार को सुनकर परम प्रसन्न हुए। राघव पंडित, अद्वैत आचार्य का पुत्र तथा समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहां तक और भक्तों के नामों का वर्णन करूं? वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे और सभी मिलकर अद्वैत आचार्य के घर आए। सारे भक्तों ने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर नमस्कार किया और अद्वैत आचार्य ने उन सब का आलिंगन किया। तब अद्वैत आचार्य ने एक उत्सव मनाया जो 2-3 दिनों तक चला। तत्पश्चात उन सब ने जगन्नाथपुरी जाने का दृढ़ संकल्प किया। सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए और शची माता की आज्ञा लेकर नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। सत्यराज, रामानंद तथा अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे आकर अद्वैत आचार्य के साथ हो लिए। मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन तथा अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से अद्वैत आचार्य के घर आए जिससे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी जा सके। उसी समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से आ गए। वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगरी पहुंचे। नवद्वीप में परमानंदपुरी ने शची माता के घर में ही अपना रहने और भोजन करने का स्थान बनाया। वे उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थी। जब परमानंदपुरी शची माता के घर पर रह रहे थे तभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना। अतएव उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र वहां जाने का निश्चय किया। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम द्विज कमलाकांत था, जिसे परमानंदपुरी अपने साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। परमानंदपुरी शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे। महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेमावेश में परमानंदपुरी के चरण कमलों की पूजा की और परमानंदपुरी ने भी महाप्रभु का प्रेमावेश में आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया मेरे साथ रुकें और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करें। परमानंद पुरी ने कहा, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं गौड़ देश बंगाल से जगन्नाथपुरी आया हूँ। नवद्वीप में माता शची तथा अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनरागमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। वे सभी आपके दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि वे विलंब कर रहे हैं तो मैं तुरंत अकेले ही चला आया। काशी मिश्र के घर में एक एकांत कमरा था, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमानंद पुरी को दे दिया। उन्होंने एक सेवक भी दिया। अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। जब स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे, तब उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। जब उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो पुरुषोत्तम आचार्य उन्मत्त हो उठे और संन्यास ग्रहण करने तुरंत वाराणसी गए। संन्यास के अंत में उनके गुरु चैतन्यानंद भारती ने उन्हें आदेश दिया, वेदांत सूत्र पढ़ो और अन्यों को इसकी शिक्षा दो। स्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा महान पंडित थे। उन्होंने आत्मा तथा मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चरण ग्रहण की। वे बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे, इसीलिए प्रायः उन मादावस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम आचार्य ने नियमानुसार अपनी चोटी तथा जनेऊ तो त्याग दिए, किंतु उन्होंने गेरुआ वस्त्र नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सन्यासी पदवी भी नहीं स्वीकार की, अपितु नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। अपने सन्यास गुरु से आज्ञा लेकर स्वरूप दामोदर नीलाचल चले गए और वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। फिर वे अहर्निश कृष्ण के प्रेम में आनंद विह्वल होकर भगवान की प्रेममयी सेवा में दिव्य रस का आस्वादन करने लगे। स्वरूप दामोदर पांडित्य की पराकाष्ठा थे, किंतु वे किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वे निर्जन स्थान में रहते थे और कोई यह नहीं जान सका कि वे कहाँ थे। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतया जानने वाले थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप थे। यदि कोई पुस्तक लिखता, श्लोक तथा गीत बनाता और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता, तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उनकी परीक्षा करते और फिर शुद्ध रूप में उसे महाप्रभु के सामने रखते। केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकें या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे। वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे साहित्य का परीक्षण यह जानने के लिए करते थे कि उनके निष्कर्ष सही हैं या नहीं, केवल तभी वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते थे। श्री स्वरूप दामोदर, विद्यापति तथा चंडीदास के गीत तथा जयदेव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद पढ़ा करते थे। वे इन गीतों को गाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंदित किया करते थे। स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे और शास्त्र चर्चा में वे देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के समान थे। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। श्री स्वरूप दामोदर अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को परम प्रिय थे और वे श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्त जनों के प्राणों के तुल्य थे। वही स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक सुनाया। हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो जो सभी प्रकार के भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंदमय बन जाती है। निसंदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुख को आच्छादित कर देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद भी नष्ट हो जाते हैं। आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उंडेलती है जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी अहेतुकी कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को उनके पैरों पर खड़ा कर उनका आलिंगन किया। वे दोनों ही प्रेमावेश में अचेत हो गए। जब दोनों ने धैर्य धारण किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने सपने में देखा कि तुम आ रहे हो, अतएव यह अत्यंत शुभ है। मैं तो अंधे व्यक्ति के समान था किंतु तुम्हारे आने से मुझे फिर से दृष्टि मिल गई है। स्वरूप ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने अन्यत्र जाने के लिए आपका संग छोड़ दिया था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के प्रति मेरा रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं दूसरे देश क्यों जाता? अतएव मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। मैंने तो आपका साथ छोड़ दिया किंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने अपनी कृपा रूपी रस्सी से मेरे गले को बांधकर पुनः मुझे अपने चरण कमलों पर वापस ला दिया है। तब स्वरूप दामोदर ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की वंदना की और नित्यानंद प्रभु ने प्रेम वश उनका आलिंगन किया। नित्यानंद प्रभु की वंदना करने के बाद स्वरूप दामोदर जगदानंद मुकुंद शंकर तथा सार्वभौम से यथा योग्य रीति से मिले। स्वरूप दामोदर ने परमानंदपुरी के चरण कमलों की भी वंदना की और परमानंदपुरी ने उलट कर प्रेम वश उनका आलिंगन किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक एकांत निवास स्थान दे दिया और एक सेवक से कहा कि वह उन्हें पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देता रहे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों के साथ मिलकर कृष्ण लीलाओं की चर्चाएं करते रहे। उसी समय गोविंद वहां आ गए। उन्होंने प्रणाम करने के बाद विनीत होकर इस प्रकार कहा, मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ। मेरा नाम गोविंद है। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके यहाँ आया हूँ। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस मर्त्य लोक से विदा होने के पूर्व ईश्वरपुरी ने मुझसे कहा कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। काशीश्वर भी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद यहाँ आएगा, किंतु मैं तो अपने गुरु की आज्ञानुसार आपके चरण कमलों पर उपस्थित होने के लिए शीघ्र चला आया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ईश्वरपुरी मुझ पर सदैव पिता जैसा स्नेह करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा वश तुम्हें यहाँ भेजा है। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ईश्वरपुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रखा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान तथा मेरे गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही पूर्ण स्वतंत्र हैं। अतएव भगवान तथा ईश्वरपुरी दोनों की कृपा किसी वैदिक नियम के अधीन नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा जाति पांति के बंधन से सीमित नहीं रहती। यद्यपि विदुर शूद्र थे, किंतु कृष्ण ने उनके घर भोजन किया। भगवान कृष्ण की कृपा एकमात्र स्नेह पर निर्भर है। केवल स्नेह के वशीभूत होकर कृष्ण स्वतंत्र रूप से आचरण करते हैं। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्नेह आचरण मर्यादा आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करने वाला है। भक्त भगवान का पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनंद में मग्न हो जाता है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और गोविंद ने भी महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से आगे कहा, आप इस पर विचार करें, गुरु का सेवक मेरे लिए सदैव आदरणीय है। अतएव यह उचित नहीं होगा कि गुरु का सेवक मेरी निजी सेवा करे। फिर भी मेरे गुरु ने यह आदेश दिया है तो मैं क्या करूं? सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, गुरु का आदेश अत्यंत बलवान होता है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यही प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार डाला, मानो वह कोई शत्रु रही हो। भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण यह सुनकर तुरंत अपने बड़े भाई की सेवा में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगे। गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए। पिता जैसे महान व्यक्ति की आज्ञा का पालन बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है, विशेषतया मेरे लिए सौभाग्य है। सार्वभौम भट्टाचार्य के ऐसा कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और उसे अपने शरीर की सेवा करने के लिए लगा लिया। सभी व्यक्ति गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास समझकर उसका सम्मान करते थे और गोविंद सारे वैष्णवों की सेवा करता था तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता था। बड़ा हरिदास तथा छोटा हरिदास दोनों जो गायक कीर्तनीय थे तथा रामाई और नंदाई भी गोविंद के साथ रहते थे। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए गोविंद के साथ रहते थे, अतः कोई भी गोविंद के सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता था। अगले दिन मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी, आपके दर्शन हेतु ब्रह्मानंद भारती आए हैं। फिर मुकुंद दत्त ने महाप्रभु से पूछा, क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊं? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य हैं, अच्छा यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं। यह कह कर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तगण ब्रह्मानंद भारती के समक्ष आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त उनके निकट पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वे मृग चर्म पहने थे। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुखी हुए। ब्रह्मानंद भारती को मृग चर्म के वेश में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बहाना बनाया मानो वे उन्हें नहीं देख रहे हैं। इसके विपरीत उन्होंने मुकुंद दत्त से कहा, मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती कहाँ हैं? मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, ये ब्रह्मानंद भारती आपके समक्ष हैं। महाप्रभु ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं हैं। तुम किसी दूसरे की बात कर रहे होगे, क्योंकि निश्चित रूप से ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। भला ब्रह्मानंद भारती क्यों मृग चर्म पहनने लगे? जब ब्रह्मानंद भारती ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, मेरा मृग चर्म श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए ब्रह्मानंद भारती ने सोचा, उन्होंने ठीक ही कहा है, मैं इस मृग चर्म को केवल प्रतिष्ठा के लिए ही धारण करता हूँ। मैं केवल मृग चर्म पहनकर अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकता। आज से मैं यह मृग चर्म धारण नहीं करूँगा। जैसे ही ब्रह्मानंद भारती ने यह निश्चय किया, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु उनके मन की बात जान गए और उन्होंने तुरंत ही सन्यासी के वस्त्र मंगा भेजे। ज्यों ही ब्रह्मानंद भारती ने अपना मृग चर्म त्याग दिया और सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, त्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, आप अपने आचरण के द्वारा सामान्य जनता को शिक्षा देते हैं, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा, अन्यथा आप मुझे नमस्कार भी नहीं करेंगे और मेरी उपेक्षा करोगे, मुझे इसी का डर है। इस समय मुझे दो ब्रह्म दिख रहे हैं, एक ब्रह्म है भगवान जगन्नाथ जो गतिमान नहीं है और दूसरे ब्रह्म आप हैं जो सचल हैं। भगवान जगन्नाथ पूज्य अर्चा विग्रह हैं और वे अचल ब्रह्म हैं, किंतु आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और आप यहाँ वहाँ चलते फिरते रहते हैं। आप दोनों एक ही ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, किंतु आप दो भूमिकाएं निभा रहे हैं, एक सचल की और दूसरी अचल की। इस तरह जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम में आप दो ब्रह्म निवास कर रहे हैं, दोनों ब्रह्मों में से आप गोरे रंग के हो और दूसरे ब्रह्म भगवान जगन्नाथ सांवले हैं, किंतु आप दोनों ही सारे जगत का उद्धार कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि आपकी उपस्थिति से जगन्नाथपुरी में अब दो ब्रह्म हैं, ब्रह्मानंद तथा गौर हरि दोनों ही सचल हैं, किंतु श्याम वर्ण वाले जगन्नाथ दृढ़ता से बैठे हैं और अचल हैं। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप मेरे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच इस तर्क में मध्यस्थ बनो। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, जीव स्थानीय है जबकि परम ब्रह्म सर्वव्यापक है, यह शास्त्रों का निर्णय है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरा मृग चर्म छुड़ाकर मुझे निर्मल बना दिया है, यह इसका प्रमाण है कि वे सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान हैं और मैं उनके अधीन हूँ। उनके शरीर का रंग सुनहला है और उनका सारा शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुडोल है तथा चंदन से लेप किया हुआ है। संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं। वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं और वे अपने द्वैत निर्णय तथा अपनी शांति में दृढ़ता से स्थित हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत के श्लोक में उल्लिखित सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं। उनकी भुजाएं चंदन लेप एवं श्री जगन्नाथ जी पर चढ़े डोरे से सुसज्जित हैं और ये उनके आभूषण रूप कंकड़ हैं। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना निर्णय यह कहते हुए सुनाया, हे ब्रह्मानंद भारती, मैं देख रहा हूँ कि आप विजयी हो। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को शिष्य और ब्रह्मानंद भारती को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा, यह शिष्य अपने गुरु से तर्क में निश्चय ही हार गया है। ब्रह्मानंद भारती ने तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहा, आपकी हार का कारण यह नहीं है, कारण कुछ दूसरा ही है। यह आपका स्वाभाविक गुण है कि आप अपने भक्तों के हाथों अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। आपकी एक दूसरी भी महिमा है जिसे आप सावधान होकर सुनो। मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता रहा हूँ, किंतु जब से आपको देखा है मुझे कृष्ण की पूरी पूरी अनुभूति हो गई है। ब्रह्मानंद भारती कहते रहे, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने हृदय में आपको कृष्ण मानता हूँ। अब मैं आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। बिल्व मंगल ठाकुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के लिए अपनी निर्विशेष अनुभूति त्याग दी। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी दशा भी उन्हीं जैसी हो रही है, क्योंकि अब यह बदल चुकी है। ब्रह्मानंद भारती इस निष्कर्ष पर पहुँचे, यद्यपि मैं अद्वैत मार्ग पर चलने वालों द्वारा पूजित था, तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, किंतु गोपियों से परिहास करने वाले एक चतुर बालक ने बलपूर्वक मुझे एक दासी के रूप में परिणत कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण के प्रति आप में अगाध प्रेम है, अतएव आप जहाँ भी देखते हैं आपकी कृष्ण चेतना बढ़ती जाती है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आप दोनों के कथन सही हैं। कृष्ण अपनी कृपा के माध्यम से साक्षात दर्शन देते हैं। कृष्ण प्रेम के बिना हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती को भगवान का साक्षात्कार हो सका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य, यह आप क्या कह रहे हैं? हे विष्णु, मुझे बचाओ, ऐसी स्तुति निंदा का दूसरा रूप है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती को अपने साथ अपने निवास स्थान ले गए। उस क्षण से ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु के साथ रहने लगे। बाद में रामभद्र आचार्य तथा भगवान आचार्य भी उनके साथ आ गए। वे अपने अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहे। अगले दिन काशीश्वर गोसाई भी आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका बड़ा सम्मान किया और वे भी उन्हीं के साथ रहने लगे। काशीश्वर महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर के भीतर ले जाया करता था। वह भीड़ में महाप्रभु के आगे आगे रहता और लोगों को दूर रखता, जिससे लोग उनका स्पर्श न कर सकें। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह देश के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने लगे। क्योंकि सारे भक्त उनकी शरण में आने लगे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब पर कृपा की और उन्हें अपने संरक्षण में रख लिया। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ समस्त वैष्णवों के मिलन का वर्णन किया है। जो भी इस वर्णन को सुनता है, वह अंततः उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनका अनुगमन करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला के 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी लौटने पर वैष्णवों से महाप्रभु की भेंट का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।